साइंस ऑफ कंट्रोलिंग माइंड, मन को वश में करने का प्रोसेस। तो पहले हमें जानना होगा कि मन को वश में करने की का महत्व क्या है। तो आप लोगों के लिए क्या महत्व है, मन को आप क्यों वश में करना चाहते हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स टू कंट्रोल द माइंड? कंट्रोल माइंड से क्या फायदा होता है, बताएंगे कोई आप में से? क्यों आप चाहते हैं मन को, मन क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए?
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी कंडीशन पे मना जाता है कि हमने जितना भी हमने पूरे जीवन में जितना भी पाया हो ना, वो एक ही क्षण में अगर मन कंट्रोल ना हो तो पूरे के पूरा हम खो देते हैं। वो सबसे इसलिए हर वक्त मन को कंट्रोल में रखना जरूरी है।
अच्छा, और कोई? यस, प्रॉपर रिजल्ट लाने के लिए, क्योंकि मन जो है वो सेंट्रल कंट्रोलिंग एजेंट है हमारे सभी इंद्रियों का, सेंसेस का। तो इसलिए कुछ भी करने के लिए माइंड प्रॉपर होना चाहिए। अगर माइंड ढंग से काम नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा बॉडी है, सब कुछ है, लेकिन अगर माइंड ढंग से काम नहीं कर रहा है तो सब बेकार है। ठीक है, तो इसलिए हमारे को जो हम एंडेवर करते हैं जीवन में, जो भी हम कार्य करते हैं, उसको सुचारू रूप से करने के लिए माइंड प्रॉपर होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। ओके, और कोई बताएंगे क्या सोचते हैं आप, माइंड क्यों जरूरी है आपके लिए, या क्या परेशानी माइंड से होती है, अनकंट्रोल्ड माइंड से? यस, हाँ, ओके। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, माइंड का फंक्शन क्या सही है क्या गलत है ये समझने के लिए माइंड का प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, और जो अच्छा है फिर उस दिशा में इंद्रियों के माध्यम से अपने को ले जाने के लिए माइंड हमको चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा माइंड हमारी डायरेक्शन डिसाइड करता है, हमारी गति डिसाइड करता है, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वेरी गुड, और
अगर किसी बंदे को एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को देखिए कि गुलाब जामुन बहुत पसंद है, अगर अब उसको खिला दो गुलाब जामुन, पूरे सब गुलाब जामुन खिला दो, फिर बाद में उसको वापस दो, तो वो क्या करेगा? उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन अब पूरा खा लिया तब उसको चीड़ चढ़ेगा उस पर। उसको मजा आता था, सिचुएशन सेम ही है, गुलाब जामुन के हिसाब से वही बनाया, वही तरीके से बनाया है, सब वही है।
अच्छा, तो माइंड जो है वो हमारे जो सुख की अनुभूति होती है वो माइंड में होती है, हा? और अगर डिप्रेशन भी कहाँ होता है, माइंड में होता है। तो कितने लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, एंग्जाइटी, चिंताओं, ये सब कहाँ होती है? ये माइंड में होती है। तो अगर माइंड प्रॉपर फंक्शन नहीं है तो डिप्रेशन है, तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। जानते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, उदासी, हर एक काम में उदासी है, क्या है, सब बेकार लगता है। तो ये सब माइंड के ही फंक्शन से होता है। और माइंड उत्साहित है, उल्लासित है, प्रसन्नचित है, और अगर माइंड प्रसन्नचित है तो पूरा शरीर भी उसके अकॉर्डिंगली कार्य करता है, स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार से माइंड का एक और काम हुआ कि हमारी वेलबींग को रखना, और उसके इम्प्रॉपर फंक्शनिंग से बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिस्ट। आजकल धीरे धीरे बहुत लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, स्टूडेंट लाइफ में भी जाना पड़ता है, बहुत सारी प्रकार की साइकेट्रिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं। ओके, फिर सब प्रकार के इनिशिएटिव्स, कुछ कार्य करने में इनिशिएटिव्स, वो माइंड के द्वारा ही हम लेते हैं। फिर कॉन्फिडेंस, ये सब जो हमारे अंदर गुण है ये सब भी माइंड के स्तर पे होते हैं। किसी व्यक्ति को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, किसी को नहीं है, कुछ भी काम नहीं कर पाता है, हमेशा उसे शंका रहती है कि क्या सही है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो दिस कॉन्फिडेंस। फिर हमारे सभी इमोशंस एक दूसरे के साथ संबंध में, तो इमोशंस जो हैं वो भी मेंटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं, प्रेम और भाईचारा इत्यादि, ये सब भी माइंड के स्तर पर होता है। फिर माइंड से, माइंड जो है वो घर है छह मुख्य प्रकार के शत्रुओं का, जो हमारी जिंदगी को पूरा हेल बना सकते हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, ये सब मन के अंदर, मन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और अगर ये चीजें हमारे मन के ऊपर हावी होती हैं तो बहुत बुरा परिणाम होता है। हम ऐसी चीज कर बैठते हैं जो हमारे लिए ही हानिकारक होता है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं ये मन की वजह से। इस प्रकार से जो मन कंट्रोल में नहीं है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, हमारे को ही गड्ढे में गिराता है। ठीक है, तो एक तो आप लोग मोबाइल थोड़ा, सब लोग थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर बीच बीच में कोई का मोबाइल आता रहेगा, जाते रहेंगे, सब डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा। ओके, प्लीज 1 आवर माइंड भी कम से कम यहां रहेगा, फिर नहीं तो मोबाइल के चक्कर में माइंड भी आपके जाता रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये जो 6 दुश्मन हैं इसकी वजह से बहुत लोग हैं जो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं एक वीडियो जिसमें कैसे छोटी सी बात को लेकर के जो क्रोध है, यदि उस पर हमारा वश नहीं है मन के ऊपर, तो वो क्रोध कैसे हमको खत्म कर सकता है। सो लेट्स सी दिस स्मॉल वीडियो क्लिप। हम अपने जीवन में इतना बड़ा शायद नहीं एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन छोटे मोटे क्रोध और उसके परिणाम तो एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति के लिए जाना जरूरी है कि ये मन के ऊपर वश कैसे कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि मन कैसे काम करता है, मन का हमारा क्या संबंध है, मन का इंद्रियों का क्या संबंध है। ये सब विषयों को जानने पर ही हम सही से इस विषय को समझ सकते हैं। ओके, तो पहले हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, व्हाट इज माइंड। तो भगवद गीता के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में सभी विषयों को समझाया है। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस श्लोक का मतलब यह है कि हम सब जो हैं वो सब भगवान के अंश हैं। ममैव अंश, मेरे अंश हैं सभी जीव सभी आत्मा। लेकिन इस समय क्या कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, मन षष्ठानी इंद्रियाणी, मन के समेत छह इंद्रियों के साथ प्रकृति स्थानी इस भौतिक जगत में स्थित होकर के कर्षति स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो हम ये शरीर नहीं हैं, हम जो हैं इस शरीर से अलग आत्मा है। आप में से कितने लोग इस तथ्य को समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो शरीर मरने पर भी नहीं मरता है। ओके, और कितने सोचते हैं कि नहीं हम आत्मा नहीं है, शरीर ही है सब कुछ। कुछ लोग सोचते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो भगवान बताते हैं कि देह अलग है और देही अलग है, शरीर अलग है और शरीर में रहने वाले हम अलग हैं आत्मा। जैसे मैं आपसे पूछूं, आज से 10 साल पहले भी आप थे क्या? थे। आज से 10 साल पहले आपका यह शरीर था क्या? नहीं था। मेडिकल साइंस के द्वारा भी हम जानते हैं कि 7 साल में ये जो शरीर है जिन मॉलिक्यूल्स का बना होता है वो सब के सब मॉलिक्यूल 7 साल में बदल जाते हैं। तो आप जानते हैं स्किन है, इसके जो सेल्स हैं धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, उनका स्थान नए सेल लेते जाते हैं। और सेल के भी अंदर, सेल किस चीज का बना होता है? अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। जैसे हम खाते हैं, जो हम खाते हैं वो धीरे धीरे अंदर जाता है बॉडी में और उससे ये सब नए नए मॉलिक्यूल्स दोबारा बनते हैं और पुराने मॉलिक्यूल्स खत्म होते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा शरीर बदलता रहता है। एक छोटे से बच्चे का शरीर होता है, अभी वो शरीर नहीं है, अभी हमारा ये युवा अवस्था का शरीर है, थोड़े समय बाद ये शरीर भी नहीं रहेगा, वृद्धावस्था का शरीर हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो छोटे बच्चे के शरीर का ही वो ग्रोथ होकर के ये बड़ा शरीर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो दूसरा शरीर है, ये दूसरा शरीर है। लेकिन लगता है ऐसा जैसे कि वही आगे चल रहा है। जैसे कि चलचित्र, जो चाहे पहले चलचित्र बनते थे तो कैसे बनते थे, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग स्टिल फोटोग्राफ्स होते थे और उनको तेज गति से जब घुमाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्शन हो रहा है, वास्तव में एक्शन नहीं हो रहा होता है, अलग अलग फोटो होते हैं लेकिन वो जब एक साथ घुमाते हैं तो लगता है कि वो एक्शन हो रहा है। आर यू फॉलोइंग? उसी प्रकार से ये हमारे सब शरीर अलग 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 शरीर मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कंटिन्यूस हो रहा है धीरे धीरे स्मूथली, इसलिए हमको उसका आभास नहीं होता है। लेकिन वास्तव में हमारा शरीर पूरी तरह से सब चेंज होता रहता है, सब बदलता रहता है, शरीर के सब सेल बदलते रहते हैं। करेक्ट। तभी तो घाव भरते हैं, एक घाव होता है थोड़े से बाद में भर जाता है, दूसरा आ जाता है, तो चेंज होता रहता है। तो शरीर मरा, 10 साल पहले आपका ईश्वर नहीं था लेकिन आप थे, सबको अनुभव है, सबको समझ है कि मैं 10 साल पहले भी था, 15 साल पहले भी था। करेक्ट। लेकिन ये शरीर नहीं था, इसका मतलब क्या कंक्लूजन है कि हम शरीर से अलग हैं। ओके, हम शरीर से अलग हैं। तो भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि ये शरीर जो है वो कितने तत्वों का बना है, 5। सब 5 के अलावा किसी का उत्तर है? नहीं, गलत। भगवान बताते हैं भगवद गीता में ये शरीर 8 तत्वों का बना है, 8। तो 5 तो आप जानते हैं जिसके आप बता रहे हैं, भूमि अपन अलवायु खम मन खम, यहां तक 5, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। लेकिन इसके परे और 3 तत्व हैं जो सटल एलिमेंट्स हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, जिनको आंखों से नहीं देख सकते लेकिन जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो है मन बुद्धि और अहंकार। अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार। मन मतलब माइंड, जिसको हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। फिर बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, और अहंकार, अहंकार मतलब अपने को पहचानना, फॉल्स ईगो, मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं। जैसे वर्तमान समय में हम सब क्या मानते हैं अपने को, ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर को अपना मानते हैं। किसी कोई व्यक्ति है उसको बोलते हैं ओ ये काला है, ये गोरा है, ये अमरीकी है, ये इंडियन है, तो ये अमरीकी इंडियन काला गोरा कौन है? आत्मा? आत्मा नहीं है ना, शरीर काला गोरा है, लेकिन हम सोचते हैं ओ ये काला आदमी, वो ये काला, वो ये अमरीकी। तो हम किससे पहचानते हैं? शरीर से पहचानते हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स, मिथ्या आइडेंटिफिकेशन, गलत पहचान। तो इस प्रकार से ये आठ तत्वों का हमारा शरीर बना है, और इसके अंदर में कौन है? हम हैं आत्मा। तो आत्मा क्या है? आत्मा हम, पर्सनैलिटी जो हम फील करते हैं, आई एम, आई एग्जिस्ट, वो आत्मा है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर वो सभी गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं। भगवान भी एक चेतन है, हम भी चेतन हैं। ये शरीर चेतन है या जड़ है? ये शरीर जीवित है या मृत है? ये एलिमेंट जो है अर्थ, वाटर, फायर, ये सब जड़ पदार्थ हैं या इनके अंदर जीवन है? कौन बताएंगे, पीछे से बताएंगे कोई? एक मृत शरीर में और एक जीवित व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एक मृत शरीर में और एक जीवित व्यक्ति में, वो जीवित व्यक्ति कब मरा कहलाता है? जब उसमें आत्मा नहीं है, इसकी वजह से भी वो काम नहीं कर सकता, करेक्ट। तो शरीर जड़ है, शरीर चेतन नहीं है, अभी भी जड़ है। अगर इसके अंदर से आत्मा चली जाए तो अभी मैं बोल रहा हूं तो बोल नहीं सकूंगा, अभी हाथ हिला रहा हूं हाथ हिला नहीं सकूंगा। तो ये हाथ जड़ है, इसके अंदर अपनी शक्ति नहीं है हिलने की, ये तभी तक हिलता है जब तक इसके ये आत्मा इसको चला रहा है। जैसे कार, कार तभी तक चलती है जब तक उसके अंदर ड्राइवर है, ठीक है। तो ये शरीर जो है वो जड़ है, लेकिन आत्मा हम जो है वो चेतन है, लिविंग है। तो लिविंग, लिविंग के सिम्टम्स क्या होते हैं कि लिविंग हमेशा एक्टिव होता है, और लिविंग के संपर्क में जो चीज आती है वो भी एक्टिव हो जाती है। जैसे ये कार, कार अपने आप में इनएक्टिव है, लेकिन जब उसके अंदर एक्टिव, अंदर ड्राइवर बैठ गया तो एक्टिव हो जाती है, करेक्ट। उसी प्रकार से ये शरीर जड़ है, अगर मृत शरीर है तो 100 साल भी होंगे तो वहीं कहीं पड़ा रहेगा, कुछ मूवमेंट नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। लेकिन जब उसके अंदर ड्राइवर है तो वो बोलेगा, हंसेगा, बात करेगा, रिएक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। तो आत्मा के अंदर एक्टिविटी है, आत्मा के अंदर महसूस करने की शक्ति है और उसके अनुसार रेस्पॉन्ड करने की शक्ति है, आत्मा के अंदर इच्छा करने की शक्ति है। जड़ पदार्थ के अंदर इच्छा करने की शक्ति होती है? कार के अंदर अपनी इच्छा होती है कहां जाना है? नहीं होती है, तो इच्छा शक्ति नहीं होती है। लेकिन यह आत्मा का गुण है इच्छा शक्ति होना, ओके। तो ये जो हम हैं, आत्मा हैं, तो भगवान के अंदर, भगवान चेतनशील हैं, भगवान की इच्छा शक्ति है और हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी चेतना है, हमारी भी इच्छा है, एक्टिविटी शक्ति है, क्रिया शक्ति, ये सब हमारे अंदर है। तो हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए अंश है मतलब हमारा एक आध्यात्मिक मन है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि है जो हमें गाइड करती है, हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, हाथ पैर कान नाक सब हैं आध्यात्मिक। तो वर्तमान में जो हमारे ये मन है, वर्तमान में जो हमारी बुद्धि है, वर्तमान में हमारे जो आंख है, जो कान है, ये सब जो पूरा शरीर है, वो हमारे ऊपर यानी आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है, एक कवरिंग है जिसके माध्यम से वो आत्मा इस भौतिक जगत के साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे आप देखे हैं गोताखोरों, टीवी में देखे होंगे, गोताखोर समुद्र के अंदर डाइव करते हैं, बहुत बहुत समय तक समुद्र में रहते हैं, कई कई घंटे तक। तो अगर किसी को समुद्र के अंदर कुछ घंटे रहना है तो क्या ये जो शरीर है इसी शरीर में हम रह सकते हैं पानी के अंदर कई घंटे तक? नहीं रह सकते ना, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये पानी में रहने के लायक नहीं है। मछली का शरीर लायक है, मछली पानी में रह सकती है, पानी में रह के उसके सब कार्य हो सकते हैं, सांस लेना, चलना फिरना सब कुछ, लेकिन हमारा ये शरीर सुटेबल नहीं है पानी में रहने के लिए। इसलिए यदि हमको पानी में रहना होगा, इच्छा है हमारी, तो क्या करना पड़ता है, फिर एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, करेक्ट, स्पेशल स्विमिंग सूट पहनना पड़ता है, गोताखोरों का स्पेशल सूट होता है। तो अभी उनके हाथ होते हैं लेकिन हाथ में दूसरी तरह के हाथ लगाए जाते हैं इसके ऊपर, फिन्स ऐसे हाथ, चौड़े चौड़े हाथ लगाए जाते हैं, जैसे कि अंदर मछली के हाथ होते हैं ऐसे हाथ लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से अभी हम लोग सांस लेने के लिए ऐसे सांस नहीं ले सकते क्योंकि पानी में से पानी में सांस लेना है, तो इसलिए एक विशेष प्रकार का मास्क पहन करके ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग लेके जाते हैं। तो ऐसे हर एक जो हमारा ऑर्गन है सांस लेने का, उसको एक दूसरे प्रकार का ऑर्गन से ढकना पड़ता है, हाथ को दूसरे प्रकार के एक यंत्र से ढकना पड़ता है, पैर को दूसरे प्रकार के यंत्र से ढकना पड़ता है, ऐसे एक पूरी पोशाक पहनते हैं। तो अंदर ये काम ये शरीर ही करता है, यह हाथ हिलता है, लेकिन जब ये हाथ हिलता है तो उसके साथ साथ वो जो ऊपर पहना हुआ हाथ है वो हिलता है, जिसकी वजह से हम पानी में रह पाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम जो भगवान के अंश हैं, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, जो भौतिक नहीं है, इस भौतिक तत्वों के नहीं बने हैं, इससे भी कोई अलग हैं, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, ये भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है, सबसे पहली बात जानने की है। भौतिक जगत मतलब ये जितने आप चांद सितारे ये सब देखते हैं और जो नहीं भी देख पा रहे हैं, लेकिन जो इन पंच तत्वों का बना है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि का बना है और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्वों का बना है, वो पूरी एग्जिस्टेंस को क्या कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड। क्या कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। भौतिक मीन्स जो इन तत्वों का बना है उसे भौतिक तत्व कहते हैं, ओके। लेकिन भगवत गीता में हमें जानकारी मिलती है कि इस दिवेश हरि बोल, रहने दो, कुछ भी करेंगे तो सबका ध्यान वहीं जाएगा, यहां से सब गायब हो जाएगा, मन कंट्रोल नहीं है सबका, इसलिए डिस्कस करने बैठे हैं यहां पर हम लोग। तो हम जो हैं वो जो सब ऑर्गन्स लेकर के हम लोग जाते हैं, तो इसी प्रकार से जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार का हमको शरीर धारण, ये जो शरीर है ये लेना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत सब कुछ नहीं है, इसके परे आध्यात्मिक जगत है जिसका वर्णन हमको भगवद गीता मिलता है। भगवान कहते हैं परस्तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त व्यक्ता सनातनः। ये जो भौतिक जगत है इससे परे एक और जगत है जो जड़ पदार्थों का नहीं है, जहां सब चीज आध्यात्मिक है, चेतन है, हर चीज चेतन है, वहां पर कोई भी चीज जड़ नहीं है, ऐसा जगत, उस जगत को कहते हैं आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर तीन चौथाई है तो उसके कंपैरिजन में ये मेटेरियल वर्ल्ड रिमेनिंग एक चौथाई है, ये तुलना समझने के लिए। तो हम ये जो पूरा बहुत सारे अलग अलग गैलेक्सीज देख रहे हैं, ये सब मिलाकर के पूरी एग्जिस्टेंस का केवल कितना है, 1/4। तो ये भौतिक जगत के अंदर इस समय हम हैं। तो जब हम आध्यात्मिक जगत, वो हमारा मूल स्थान है, हमारा ओरिजिनल घर, आत्मा का ओरिजिनल स्थान रहने का कहां है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आध्यात्मिक जगत में है, जहां पर क्या करते हैं हम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या करते हैं हम, तो वहां पर भगवान और सभी शुद्ध आत्मा जो भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, ऐसे लोगों का वहां धाम है, वो वहां रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान बहुत से प्रकार की लीलाएं करते हैं, वेरी वंडरफुल पास्ट टाइम्स, लीलाएं, खेल, प्लेजर स्पोर्ट्स, और हम सब उसमें भाग लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं 5000 साल पहले, तो वो जो आध्यात्मिक जगत का जीवन है उसकी एक झलक हमको यहां दिखाते हैं जब यहां पर आते हैं 5000 years back। तो आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में बहुत अलग अलग प्रकार की उनकी बाल लीलाएं, अत्यंत अलग मधुर लीलाएं उनकी हैं। तो वो सब कार्य नित्य रूप से आध्यात्मिक जगत में चलता है, नया 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 वैरायटीज ऑफ वंडरफुल प्लेस। और हम सब जो आत्मा हैं, यानी कि जिनका मन है, जिनकी इंद्रियां हैं, सब कुछ है, बहुत आध्यात्मिक शरीर है, इंद्रियां सब कुछ, उन इंद्रियों से हम भाग लेते हैं। जैसे ये भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का एक बिगड़ा रूप है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। तो यहां पर भी आप लोग खेलते हैं, तो ऐसे ही वहां पर भी खेलते हैं, लेकिन यहां पर खेलते हैं हम इस शरीर से, भौतिक शरीर से, लेकिन वहां पर हम खेलते हैं, भाग लेते हैं लीलाओं में आध्यात्मिक शरीर से। ओके, तो ये आध्यात्मिक शरीर में, आध्यात्मिक जगत में वो जीव रहते हैं, वो आत्मा रहती हैं जो अपनी स्वस्थ अवस्था में है। स्वस्थ डिजीज नहीं है, स्वस्थ है। मतलब क्या? मतलब जो अपनी इच्छा से हमेशा भगवान की सेवा में रत रहती है, भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा में प्रेमवश भगवान की सेवा करते हैं और इस प्रकार से वहां रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम सबके अंदर एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, क्योंकि हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं हैं, इसलिए हमारे अंदर एक छोटी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। तो वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, मैं खुद इंडिपेंडेंटली ये जो सृष्टि है, जगत है, इसका मैं भोग करूंगा। वास्तव में ये सृष्टि किसकी संपत्ति है? जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है वो किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है। भगवान मतलब जन्माद्यस्यतः, जो हर चीज का आदि है, उद्गम है, जिसकी हर चीज जो उसकी शक्ति है, तो हर चीज भगवान की शक्ति है। लेकिन जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके इच्छा करते हैं, गलत इच्छा करते हैं, मैं क्यों सेवा करूं, मैं खुद भोक्ता बनूंगा, मैं खुद एंजॉय करूंगा। जैसे होता है कोई कंपनी में है, कोई कंपनी का सेवक है, कोई मैनेजर है, तो वो इच्छा करता है काश मैं प्रोप्राइटर बन जाऊं, तो है ना। तो उसी प्रकार से हम जब ऐसी इच्छा करते हैं कि हम ये प्रकृति का, सृष्टि का जो भी है उसका भोग करेंगे, है तो भगवान की, तो इसलिए उसका उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की इच्छा अनुसार होना चाहिए। लेकिन जब हम दुरुपयोग करते हैं अपनी इच्छा शक्ति का और गलत इच्छा करते हैं कि भगवान की संपत्ति को मैं भोग करूं, तो वो हमारी डिजीज्ड कंडीशन है, अस्वस्थ स्थिति है, अस्वस्थ। जब हम ऐसी इच्छा करते हैं तो भगवान के द्वारा हमें इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। जैसे इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। तो घर में पिता हैं, मां हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए। तो बच्चे कई बार उल्टी सीधी जिद करते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कार है, तो छोटा सा बच्चा है, अभी जिद कर रहा है मुझे कार चलानी है। छोटा बच्चा है तो कार चला नहीं सकता, लेकिन जिद करता है कार चलानी है, मुझे ये लाइट से खेलना है, टीवी चलाना है, मोबाइल से खेलना है, ऐसे सब बच्चे का ऐसा स्वभाव होता है। तो जब बच्चे ऐसी इच्छा करते हैं, बेतुकी इच्छाएं, तो फिर कई बार माँ बाप क्या करते हैं, मान लीजिए टीवी या कोई कार चलाना है तो कुछ एक खिलौना कार या कोई टूटा हुआ पुराना टीवी, ऐसी चीज जो बेकार की है, जिसका कोई यूज नहीं है, उसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, खेलना है, ये करना है, जाओ इसके साथ खेलो, जो मेन चीज है, जो यूजफुल है, उसमें डिस्टर्ब मत करो। तो जब बच्चे ऐसा करते हैं तो उनको कुछ बेकार पड़ा हुआ उल्टा सीधा पुराना टीवी, पुरानी कार ऐसा करके देते हैं, ठीक है उसका खेलो, और अभी खेलो, लेकिन पुराना कार, पुरानी टीवी है तो उसमें भी बच्चे की शक्ति नहीं है कि वो अपने आप उसको ऑपरेट कर सके, अपने आप उसको चला सके, तो अपने नौकर को ही भेज देते हैं, जाओ उसको जरा खिला के ले आओ वहां पर। तो फिर नौकर लेके जाता है और बच्चे को फुसला करके, तो बच्चे का जैसे कार चलाने का इच्छा है तो पुरानी बेकार कार में बैठता है और बच्चे का हाथ पकड़ता है और स्टीयरिंग बच्चा पकड़ता है और वो बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है कार चला नहीं, हाँ देखो चलाओ कार चलाओ, एक्सेलेटर पे पैर उसका है, उसके ऊपर उसका पैर है, तो वो सब काम करता है वो व्यक्ति, लेकिन उसको ऐसे फुसलाता है जैसे कि बच्चे को लगे तुम कार चला रहे हो, कार चलाया हाँ चला रहे हो ना, हाँ अभी किधर जाना है, इधर मोड़ना है, हाँ चलो इधर मोड़ो, इधर मोड़ना है, चलो इधर मोड़ो, सब काम कौन कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन बच्चे को ऐसा लग रहा है अभी मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। तो इसमें फिर क्या होता है, अभी चलाते चलाते वो पुरानी कार है, जंक कार है, जंक टीवी है, तो प्रॉब्लम आनी है उसमें है? तो कार चलाए बीच में रुक गई है? या कुछ भिड़ गई कहीं है? तो उसकी वजह से बच्चा भी रोने लगता है, कुछ लग गया, चोट लग गया। तो फिर वो नौकर पूछता है, चोट लग गई? ओ तो ये कार नहीं चलानी? नहीं चलानी। अभी क्या चलाना है? अभी वो चलाना है, चलो वो चलाओ। अब इसको वहां लेके आता है, फिर उसी तरीके से वहां बैठाता है और फिर उससे वो चलवाता है। तो इस प्रकार से बच्चे को जब तक खेलने की इच्छा होती है, जो जो खेलने की इच्छा होती है उसको वो व्यक्ति अलग अलग जगह पर ले जाता है और उसकी इच्छा के अनुसार, लेकिन पूरी तरह से बच्चा स्वतंत्र कभी नहीं होता, हमेशा वो व्यक्ति ही सब कुछ कराता रहता है, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है जैसे वो खुद सब कुछ कर रहा है। हाँ, तो उसी प्रकार से जब हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम प्रकृति का भोग करेंगे तो यह संभव नहीं है, हम स्वतंत्र हो जाएंगे यह संभव नहीं है, क्योंकि हम अपनी संवैधानिक स्थिति में, मौलिक स्थिति में हम हमेशा भगवान के दास हैं, हम उन पर निर्भर हैं, तो हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन जिद कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे अपने आप एंजॉय करना है, मैं आपको भूल जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। तो इसलिए फिर भगवान हमारी इस बेकार की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सेविका, जिसे माया शक्ति कहते हैं, जो इस भौतिक जगत का संचालन करने वाली शक्ति है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसके नियम के द्वारा ये प्रकृति संचालित होती है, समय पर सूर्य आना, ऋतुओं का बदलना, ये सब शरीर की संरचना, अलग अलग प्रकार की शरीर बनाना, उनके बीच में सब लॉज, क्या करने से क्या होगा, कर्म का सिद्धांत, ये सब नियमों का जो पालन होता है भगवान की जिस शक्ति के द्वारा, उस शक्ति को कहते हैं, क्या नाम है कहते हैं उसको, फिर से बोलिए, माया शक्ति। तो माया का मतलब क्या होता है? मा अयम, जो नहीं है ऐसा। तो माया शक्ति भगवान की वो शक्ति है, इल्यूजरी पोटेंसी, इल्यूजन, जो हमको भ्रमित करती है सोचने में कि हाँ हाँ हाँ, तुम इंडिपेंडेंट हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम एंजॉय कर रहे हो, जैसे बच्चा वो उसको फुसलाता है, हाँ हाँ देखो तुम कार चला रहे हो, कहाँ मुड़ना है, इधर मुड़ना है ना, हाँ देखो कितने अच्छी कार चला रहे हो, तुम उसको पुचकारते भी है, अरे वाह तुम तो बड़े बढ़िया ड्राइवर हो गए, बच्चा हाँ वो बढ़िया ड्राइवर हो गया। तो उसी प्रकार से ये माया शक्ति के प्रभाव में रह करके हम इस भौतिक जगत में उसी के अंडर में खेल रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम स्वतंत्र हो गए। तो नाउ यू कैन शो दैट चैरियट, यस। तो अभी हमारी वर्तमान स्थिति यहां बताई गई है, आप यहां क्या क्या देख रहे हैं? एक तो घोड़े देख रहे हैं, फिर और क्या देख रहे हैं? एक इंटेलिजेंस ड्राइवर है, और क्या है? यात्री है, पैसेंजर, आत्मा, और लगाम है, घोड़े की लगाम, वो क्या है? माइंड है। ओके, तो ये पूरा जो रथ है, जिसमें ड्राइवर है, जिसमें लगाम है, जिसमें घोड़े हैं, ये सब किसकी संपत्ति है? किसके बनाए हुआ है? ये भगवान का बनाया, आत्मा का तो नहीं बनाया हुआ, ठीक है। ये सब पे अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? वो माया शक्ति, ये माया शक्ति के द्वारा सज्जित है ये सब, ये माया के नियम से चलता है सब, घोड़े, लगाम इत्यादि, ड्राइवर, इंटेलिजेंस सब। तो इस प्रकार से हमको खेलने की इच्छा हुई, घोड़ा चलाने की इच्छा हुई, घोड़ा गाड़ी पे बैठ चलाएंगे, घोड़ा गाड़ी पे घूमेंगे, घोड़ा गाड़ी पे जाए घूमेंगे, तो एक घोड़ा गाड़ी भगवान ने माया के द्वारा अपनी माया शक्ति से निर्मित करके हमको दिया। तो ये है हमारा शरीर, शरीर, शरीर का जैसे हमने बताया आठ तत्व, तो ये जो इंद्रियां हैं ये वो पंच महाभूत की बनी है, और उसके ऊपर है फिर मन और फिर ये बुद्धि। तो इस प्रकार से हम अपने इस रथ में बैठ गए हैं, ठीक है। अब इस रथ को चला रहे हैं भगवान, परमात्मा के रूप में भगवान हर रथ में जो आत्मा है उसके साथ साथ बैठे रहते हैं, उसे हम कहते हैं परमात्मा। तो भगवद गीता भगवान क्या बताते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मयन सर्वभूतानी यंत्र रूढ़ानी मायया। इस श्लोक का मतलब यह है, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं जो ईश्वर हूं, जो परम नियंता हूं, ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी जो शरीर हैं उनके हृदय देश में, इन द रीजन ऑफ हार्ट, मैं बैठा रहता हूं और क्या करता हूं, ब्राह्मयन सर्वभूतानाम, सभी आत्माओं को मैं घुमाता हूं। यंत्र रूढ़ानी, यंत्र, आप सब लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ना, यंत्र, यंत्र विद्या सीख रहे हैं, स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच के जो हैं, यंत्र विद्या। तो यंत्र मतलब मशीन। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जीवों को एक यंत्र में बैठा करके, एक गाड़ी में, एक घोड़ा गाड़ी में बैठा करके घुमा रहा हूं। तो इस प्रकार से बच्चे की इच्छा हुई, हमारी इच्छा हुई, घूमना है, घूमना है, तो भगवान ने हमको भी एक, जैसे होता ना गाइडेड टूर, आप बॉम्बे में उतरे, वहां पर एक टूरिस्ट कंपनी से संपर्क किया, हाँ ठीक है आपको घूमना है, बैठ जाओ गाड़ी में, फिर उसका फिक्स्ड टूर है, ये स्पॉट ले जाएगा, पहले ये स्पॉट, फिर ये स्पॉट, फिर ये स्पॉट, फिर ये स्पॉट, ठीक है। गए आप लोग कभी ऐसे टूर पे? कितने लोग गए? ओके, बहुत कम लोग। तो जब आप बैठ जाते हैं गाड़ी में, एक बार आपने फिक्स कर दिया कि मुझे ये टूर गाड़ी में बैठना है, तो फिर उसका अपना शेड्यूल होता है, पहले ये, पहले यहां, पहले यहां, पहले यहां, उसके अनुसार चलना पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम घूमने की इच्छा करते हैं इस भौतिक जगत में एंजॉय करने की, तो भगवान हमें ऐसे गाइडेड टूर पे ले जाते हैं, घुमाते हैं। कितने प्रकार? 84 लाख प्रकार के शरीरों में बैठा करके अलग अलग जगह पे घुमाते हैं। कितने प्रकार के शरीर हैं? 84। तो ये मनुष्य शरीर में से एक है, पेड़ पौधे एक हैं, जानवर एक हैं, इंसेक्ट्स, देवता, ये सब अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। तो सभी में शरीरम यत अवाप्नोति यत चापि उत्कामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयः। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि हमको अलग अलग प्रकार के शरीर में भगवान घुमा रहे हैं। तो ये सब 84 लाख प्रकार के शरीरों में हम लोग को घुमाते हैं और हमारा उसमें क्रमिक विकास होता है, उसका फिक्स शेड्यूल है कि पहले पेड़ पौधे, उसके बाद में फिर मछली, फिर पेड़ पौधे, उसके बाद फिर इंसेक्ट्स, उसके बाद फिर रेप्टाइल्स, और उसके बाद फिर चार पग वाले जानवर, उसका फिर इस प्रकार से मनुष्य। तो ये सब में हमको घुमा रहे हैं कि आपको एंजॉय करना है। देख लो सुअर के शरीर में, देख लो मल का टेस्ट क्या होता है, कीड़े के शरीर में देख लो क्या टेस्ट होता है, चिड़िया बन के देखो उड़ने का मजा, मछली बन के देखो तैरने का मजा, ऐसे हमको सब मजा करना था ना। तो सब प्रकार के अलग अलग शरीरों में हमको घुमाते हैं, सब प्रकार के मजा हमको दिलाते हैं। जैसे टूर वाले अलग अलग जगह ले जाते हैं, मंदिर भी है, सी बीच भी है, म्यूजियम भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसे इस प्रकार से भगवान हमें अलग अलग शरीरों देते हैं और हर शरीर में हमको एक अलग प्रकार का स्वाद चखने को मिलता है, एक अलग प्रकार का, हमारे को हर शरीर में एक प्रकार की इंद्रियां मिलती हैं, एक प्रकार की जीवा मिलती है, एक प्रकार की आंख मिलती है, एक प्रकार का कान मिलता है, और उसमें अलग अलग विषयों का हम स्वाद लेते हैं। जैसे तो सुअर की जो जीवा है उसको क्या चीज सबसे पसंद है? मल पसंद है, हमें मल से घृणा आती है क्योंकि हमारा शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है। जो पक्षी है उसे क्या खाने मजा आता है? छोटे छोटे कीड़े, उसकी खुराक अलग है, सबकी खुराक अलग है, सबके कान में खुराक अलग है। इस प्रकार से हमें भगवान ये अलग अलग रथ में बैठा कर घुमा रहे हैं और अलग अलग रथों में अलग अलग प्रकार के भोग विषय हम लोग कर रहे हैं। तो जब हम ये रथ में सवार होते हैं तो अभी जो हमारी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी, स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो थी, अभी वो आ जाती है इस रथ के माध्यम से भगवान की माया शक्ति के हाथ में, क्योंकि हम स्वतंत्र तो हो नहीं सकते कभी भी पूरी तरह से, वो संभव नहीं है, ये हमारी संभव नहीं है, आत्मा हमेशा निर्भर रहती है। जैसे कि जो कैदी होता है, कौन आता है कैद में? जो सरकार के नियमों को स्वतंत्र का उल्लंघन करता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं नहीं मानता सरकार के नियमों को, स्वतंत्र होना चाहता है लेकिन स्वतंत्र हो नहीं सकता सरकार से, इसलिए उसे क्या करना, कहां कहां भेज दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। अभी जेल में सरकार के अंडर में है, लेकिन अभी कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में है सरकार के, प्रिजन डिपार्टमेंट, क्राइम डिपार्टमेंट के अंडर में, अभी उसके अंडर में काम कर रहा है। उसी प्रकार से हम जब स्वतंत्र होना होने की इच्छा करते हैं, जो संभव नहीं है, तो हमें भगवान अपनी माया शक्ति के अंडर में डाल देते हैं, और माया शक्ति शक्ति के द्वारा निर्मित है ये मन, इंद्रियां और ये बुद्धि। तो हमारी पूरी स्वतंत्रता छीन करके इनके हाथ में आती है। तो वर्तमान में हमारी स्थिति ऐसी ही है जैसे कि जो पैसेंजर है ये मानो सोया हुआ है, इच्छा करके भौतिक जगत में आने की, इसको एक एक, एक शरीर मिल गया, एक प्रकार का रथ मिल गया, और अभी ये एनेस्थीसिया लग गया है, एनेस्थीसिया दे दिया सो गया, और अभी वो जो उसकी स्वतंत्रता थी वो पूरी तरह से अभी ये जो भौतिक मन और जो भौतिक इंद्रियां और जो भौतिक बुद्धि है ये मिलकर के उसको, जो इंडिपेंडेंस है उसको लेकर के घुमा रही है उसको, और इसको पूरा गाइड कौन कर रहा है, परमात्मा गाइड कर रहे हैं, परमात्मा के गाइडेंस में ये इस प्रकार से रथ घूम रहा है। अभी आत्मा के हाथ में वो जो है स्वतंत्रता नहीं है, वो सोया हुआ है, इसलिए वो कुत्ते के शरीर में जो आत्मा है वो कुत्ता जैसे ही व्यवहार करेगा, उसका मन कुत्ते जैसे ही व्यवहार करेगा, वो हड्डी, उसका हड्डी खाने के प्रति आकर्षण होगा, उसका एक फीमेल डॉग के प्रति आकर्षण होगा, क्यों, क्योंकि अभी वो आत्मा एक एक प्रकार के शरीर में है और उसकी पूरी इंडिपेंडेंस ये शरीर के हाथ में है, ये मन के हाथ में है, डॉग के अंदर जो माइंड है उसके अनुसार ही वो काम करेगा, ही कैन नॉट एक्ट अदरवाइज। गाय है तो गाय की तरह से काम करे, भैंस है तो भैंस की तरह से काम करे, देखे ना आपने, सब जानवर अपने अपनी तरह से काम करते हैं, उनके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है कि इनको ट्रेन करके कोई दूसरे तरह से काम करने लगे, नहीं, जानवर बिल्कुल इस तरह से काम करते हैं। तो इस प्रकार से 80 लाख योनियों में जाने के बाद में अभी हम कहां पर पहुंच गए हैं, इस गाइडेड टूर में हम कौन से मुकाम पर पहुंच गए हैं, अभी मनुष्य जीवन में पहुंच गए जो वर्तमान समय। तो अभी जब मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है, जानवरों के शरीर में और मनुष्य के शरीर में क्या अंतर है, आंख नाक कान ये सब वहां पर भी है, है ना, उसकी भी इंटेलिजेंस है, जानवर की भी इंटेलिजेंस होती है ना, बिल्ली को पता है दूध कैसे पीना है, कहां रखा है, फ्रिज कैसे खोलना है, चिड़िया को पता है अपना बचाव कैसे करना है, उसकी भी इंटेलिजेंस है। आप जानते हैं ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो हर साल एक नॉर्थ पोल से उड़ करके साउथ पोल तक जाते हैं, तो कितनी इंटेलिजेंस चाहिए उसके लिए, आदमी की भी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, है ना, तो सबके पास है, सब जानवरों के पास इंटेलिजेंस है, माइंड भी है, सेंसेस भी है, और वो आत्मा भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या स्पेशलिटी है मनुष्य के रथ की, मनुष्य शरीर की क्या स्पेशलिटी है, कौन बताएगा, जो नए आए लोग, जानवरों में हम में क्या अंतर है, हाँ जी, बुद्धि तो हमने कहा वहां पर भी है, वो भी इतने बुद्धि हैं, इतने बुद्धिशाली हैं कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आते हैं, इसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए नेविगेट करने के लिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल आना है, देखिए इसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए। मछली को, ऐसे ऐसी मछलियां हैं जो 100-100 मील दूर जाकर के अंडे देती हैं और फिर अगले साल फिर दोबारा से वहीं जाकर के अंडे देती हैं, कितनी बुद्धि चाहिए उसके लिए। कुत्ता है, कुत्ते को ही पता है हर रोज सुबह इतने टाइम पर मेरा स्वामी मेरे को रोटी देता है, वो उसी टाइम पे आता है और पूछने लगता है अभी मैं आ गया हूं दो मेरे को। चिड़िया है, चिड़िया को आप दान डालो, जहां दान डालोगे वहीं पर चिड़िया हर दिन आएगी, तो ये बुद्धि का काम नहीं है, है ना, बुद्धि है तो क्या डिफरेंस है, यहां कोई बताना चाह रहा था, हाँ जी, हाँ जी, संवेदना, परसेप्शन, क्यों आप कुत्ते को मारो कुत्ता भी हो चिल्लाएगा उसको भी लागणी, अच्छा तो आपने लागणी, तो लागणी तो जानवर में भी होती है। आप देखो गाय, गाय का छोटा सा बछड़ा होता है जब जन्म होता है तो गाय, आप गाय के पास जाओ आपको सिंह से मारेगी, बच्चे को कहीं भी दूर नहीं जाने देगी, रोएगी, आंखों से आंसू भी आएंगे, यदि बच्चा मर जाता है छोटा बच्चा तो आंख से रोती है, तो उसके अंदर भी संवेदना है, लागणी उसके अंदर भी है, यस, हैं जी, अहंकार, कुत्ते के अंदर भी अहंकार है। आप सड़क से गुजरोगे रात को, कुत्ता वाह 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 मेरे एरिया से गुजर रहा है, अच्छा ये मेरा एरिया है। दूसरा कुत्ता आएगा, आपस में लड़ेंगे, ये मेरा एरिया है, वो नहीं मेरा एरिया है। मनुष्य के रथ को परमात्मा गाइड करते हैं, तो कुत्ते के रथ को कौन गाइड करता है? वो अपने आप चलता है, वो इतना इंटेलिजेंट हो गया उसको परमात्मा की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। यस, क्या उत्तर दिया उन्होंने? मनुष्य ईश्वर के बारे में सोच सकता है, जानवर नहीं सोच सकता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? पावर ऑफ कंट्रोल, विच इज टूडेज टॉपिक, दैट्स वाई वी आर हेयर। पावर ऑफ कंट्रोल, तो मनुष्य जो है कंट्रोल कर सकता है। यस, यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य जो है वो किसी हायर पर्पज के लिए, मात्र शरीर की देखभाल से ऊपर किसी विषय के लिए अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है, और इसलिए अंततः भगवान के विषय में भी सोच सकता है और उसके तरफ जाने का प्रयास कर सकता है। नटशेल, मनुष्य शरीर में संभव है कि हम ये डिस्कशन कर सकें, कि हम समझ सकें कि हाँ ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है, मैं इसमें बंधा हुआ हूं, कि मैं बंधा हुआ हूं, इसको हम समझ सकते हैं मनुष्य जीवन में। जानवर के जीवन में इतने ज्यादा बंधे हुए हैं, इतनी गहराई से बंधे हुए हैं कि हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते हैं कि हम बंधे हुए हैं, इसलिए उस बंधन से निकलने की इच्छा भी नहीं होती है। तो कंट्रोल रखना, यानी कि इसलिए कंट्रोल, वी हैव डिजायर टू बिकम फ्री, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होने की इच्छा, ईश्वर को जानने की इच्छा। क्यों? जिससे कि हम ये सब जो बीमारियां, ये सब जो परेशानियां जो हमारे पर हावी हो रही हैं, तो मनुष्य चिंतन करता है केवल कि इसका अल्टीमेट उपाय क्या है, क्यों ये बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये सब क्या, ये सब प्रश्न जो है, मैं इससे कैसे मुक्त हूं, ये मन मेरे वश में क्यों नहीं है, ये मुझे क्यों अपने वश में किए हुए है, ये प्रश्न, इनका उत्तर ढूंढना, ये केवल मनुष्य शरीर में होता है। अर्थात मनुष्य शरीर जब मिलता है तब जो हमारी इंडिपेंडेंस थी, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, जो जानवरों के शरीर में पूरी तरह से हमसे छीन ली गई थी, वो वापस हमारे को दी जाती है, कुछ कुछ अंश में, थोड़े रूप में, पूरी तरह से नहीं, कुछ अंश में, थोड़े से उसमें। इसीलिए अभी आप देखिए, आप लोग को हमने इनविटेशन दिया, आज माइंड कंट्रोल के ऊपर प्रोग्राम है, तो फिर आप में से सब लोगों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग करके सोचा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जिन्होंने उसका सोच के निर्णय निकाला, शायद कुछ हो सकता है, कोई अच्छी चीज जानने को मिले, तो वो लोग यहां आए। अभी यहां बैठने में भी कुछ लोगों ने सोचा, पांच मिनट बाद भी कुछ और करना चाहिए, चलो बाहर चलते हैं। तो ये भी जो हो रहा है काम, किस वजह से हो रहा है? ये वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के फल से हो रहा है, कि आपको थोड़ी स्वतंत्र शक्ति है लेकिन पूरी स्वतंत्रता नहीं है। मान लीजिए आपने, हम आपको पैम्फलेट देने आए दो दिन पहले कि मुझे जाना ही है, ठीक है, लेकिन जब 8 बजे तो पता लगा आपका पेट खराब हो गया पूरी तरह से, हा? और टॉयलेट जाना पड़ रहा है बार बार, 5 मिनट में 5 बार, कोई शक्ति नहीं रही आने की, बेड पे लेट गए पूरा, बल्कि आपको 108 बुला करके हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो आप चाहते थे लेकिन फिर भी यहां नहीं आ पाए। भाई स्वतंत्रता है लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है। जैसे गाय को एक खूंटे से बांधा हुआ है, तो जहां तक रस्सी जाती है वहां तक है स्वतंत्रता, वहां तक कहीं भी खा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली रस्सी है, रस्सी के बियॉन्ड नहीं जा सकती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में हमें थोड़ी स्वतंत्रता है। तो क्या स्वतंत्रता है? वो कि अभी तक जो गाइडेड टूर चल रहा था, जो ऊपर नीचे हम लोग जा रहे थे, कभी जानवर, कभी कीड़ा, कभी देवता, ये सब जाकर के वापिस अभी हम मनुष्य जीवन पे आ गए, अभी हमें भगवान ने चांस दिया है अभी आप क्या करना है, दोबारा से चक्कर लगाना है या इस चक्कर में से पूरी तरह से निकल करके वापस घर आध्यात्मिक जगत जाना है। ये जो ऑप्शन है ये केवल मनुष्य शरीर में है, समझ रहे आप? क्या ऑप्शन, दोबारा चक्कर लगाना है या इस चक्कर से पूरी तरह से निकल जाना है? तो जो लोग मनुष्य जीवन में ये ऑप्शन देते हैं, अभी फिर से जाना है, इतनी बार चक्कर लगा के आए, हर योनि में हर जीवन में जन्म मिला, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, अलग अलग प्रकार के भोग भी मिले, सुअर का शरीर मिला तो हमने मल का स्वाद लिया, लेकिन फिर जब वो सरदार जी लोग आए पकड़ने के लिए तब फिर हम डर डर के भागे और फिर बाद में उन्होंने हमको पकड़ लिया और काट के भून के खा गए, ऐसा भी हुआ। पक्षी बने तो उड़े लेकिन फिर शिकारी ने तीर लगाया या गोली मारी तो मर गए, डर डरे, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। हर योनि में हर शरीर में हम सोचते तो हैं हमको सुखी मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम अपनी अस्वाभाविक स्थिति में हैं इसलिए सुख मिलता है बहुत छोटा तनिक और उसके साथ साथ दुख मिलता है बहुत ज्यादा। ये स्टोरी है, आप सोच लीजिए, हर इंद्रिय सुख के पीछे, इंद्रिय सुख इतना सा और उसके पीछे दुख इतना सा। जैसे ये पूरा भौतिक जगत कौन से सबसे बड़ा इंद्रिय सुख, मैथुन सुख, उसके पीछे चल रहा है, केंद्र पूरे जगत को चलाने वाला मैथुन सुख। तो मैथुन सुख कितना देर, कुछ सेकंड्स रहता है, लेकिन उसके लिए कितना प्रयास, पूरा जीवन उसी के लिए प्रयास, ये पूरी डिग्रीज लेना, घर बनाना, परिवार को मेंटेन करना, उसके लिए हर रोज 12-13 घंटे काम करना, तब जाकर के वो कुछ क्षण का मैथुन सुख। दिस इज द रियलिटी, वो कुछ क्षणों के सुख के लिए इतना सा। और उसमें भी एड्स, हेपेटाइटिस, ना जाने कितने प्रकार के रोग, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, फिर उधर से बच्चा ही पैदा होता है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल मींस यूज करके बच्चे ना हो। तो ऐसे सब इंद्रिय भोग के रास्ते में हम क्या अनुभव करते हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं। बच्चा कार चलाने की कोशिश तो करता है लेकिन कभी कभी कार रुक जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ये आता है, कभी वो, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं बीच में। तो अल्टीमेटली इस तरह से हर योनि में हम जो घूम रहे हैं, थोड़ा 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 सुख मिलता है लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़ा दुख सब मिलता है, और जितना भी सुख मिलता है वह क्षणिक होता है, बहुत छोटा होता है, टेम्प्ररी होता है, इसलिए हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं उससे, उस सुख से कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन बस ये सोच सोच के सुखी होते रहते हैं कब दूसरा सुख आएगा, नेक्स्ट कब आएगा। अभी वैकेशंस, जब एग्जाम चल रहे तो वैकेशंस, वैकेशंस, फिर जब वैकेशंस खत्म हो गई, उसका फिर एग्जाम, अभी दोबारा नेक्स्ट वैकेशन का, एक महीने रह गया, 15 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, ऐसे आने वाले सुख को सोच करके हम सोच जाते हैं, एग्जाम पढ़ते रहते हैं, और पढ़ना तो बड़ा बोरिंग लगता है ये सबको, इसलिए क्या सोचते हैं, फिर सपने में खो जाते हैं, 4 साल बाद मेरे को डिग्री मिली इंजीनियर, और फिर कैंपस इंटरव्यू, और कैंपस में रिलायंस कंपनी, और उससे मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं भरूच में जाकर के इंजीनियर बन गया, और मेरे अंडर में इतने लोग, और मैंने बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, मैंने एक बड़ा पुल बनाने का काम आया है, और वो पुल बनाया है, पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया है इंजीनियर का, वाह क्या ब्रेन है। तो ऐसे सब सपने हम लोग देख देख के सुखी होते रहते हैं, लेकिन वो पुल बनाने में क्या हड्डी पसली एक होती है वो पता लगता है ना, जब वास्तव में पुल बनता है तब तक तो उसका कोई स्वाद नहीं होता है? और कितने दिन रहता है वो, आप लोग सब इंजीनियर बने, जब एडमिशन लिए, सिलेक्शन जब होता है, ओ कितने दिन रहता है वो सुख, ओ इसका सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड, उसके बाद जब एडमिशन होते हैं तो यहाँ तो 50,000 इंजीनियर हैं, वो कोई नई बात नहीं इंजीनियर बनना, 1,000 डॉक्टर हैं। अभी समस्या ये है कि 2 महीने बाद ही एग्जाम है, सेमेस्टर छोटा है, लेट एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में, इसलिए 5 महीने की पढ़ाई 2 महीने में करनी पड़ेगी और पूरी तरह से दिन रात उसमें एग्जाम की चिंता, टेंशन। और फिर एग्जाम में भी हम देखते हैं एग्जामिनर कोई अपने मन से दे रहा है, सब कुछ उल्टा सीधा काम भी हो रहा है, करप्शन भी हो रहा है, ऐसे देख देख के बड़ी बड़ी समस्याएं हमको आती रहती हैं। तो ये जो इंद्रिय सुख का रास्ता है, बुद्धिमान व्यक्ति इसको देख सकता है कि ये सुख नहीं है, ये दुख है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नयते आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा। ये जो इंद्रिय भोग का रास्ता है ये वास्तव में दुख का रास्ता है। सुख मिलता है कहने मात्र को, जैसे रेगिस्तान में प्यास लगी है और उसमें से कोई ड्रॉपर से एक बूंद दो बूंद आपकी जीभ पे टपका दे तो उसे क्या प्यास बुझने वाली है? नहीं बुझने वाली है। तो ऐसे ही चपल सुख, कुछ क्षण का सुख, उससे कभी संतुष्टि नहीं होती। तो ये मनुष्य जीवन मिलने पर अभी ये ऑप्शन आपको दिया है, अभी भी दिमाग में ठिकाने नहीं आया, दोबारा जाना है या समझ में आ गया है, अभी कान पकड़ लो कि भगवान मैं समझ गया हूं, ये मेरी स्वाभाविक स्थिति नहीं है इस प्रकार से इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए इच्छा करना, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग प्रकार के शरीरों में घूमना पड़ता रहता है। नहीं, मैं अभी समझना चाहता हूं सच्चाई क्या है, मैं अभी जानना चाहता हूं। तो फिर वो व्यक्ति भगवद गीता के माध्यम से भगवान की वाणी को समझना चाहता है और इसके माध्यम से जानता है भक्तों के माध्यम से कि क्या चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है कि मेरी ये स्थिति है और मैं जबरदस्ती ये जो मन और मेरी जो इंद्रियां हैं ये मुझे खींचे ले जा रही हैं, मैं उनका दास बन गया हूं, मैं इनका स्वामी नहीं हूं, मैं इनका दास बन गया हूं, मैं सोचता हूं कि ये मैं इनका स्वामी हूं लेकिन मैं इनका दास हूं। इसलिए हम सब क्या हैं? अपनी इंद्रियों के दास हैं, हम सब दास हैं, हम सब दास रहते हैं। कोई आदमी सिगरेट पीना शुरू करता है फर्स्ट ईयर में आता है, घर से सब अच्छे आते हैं 12वीं तक ज्यादातर, फिर आता है फिर उसके सीनियर्स को देखता है, सब लोग स्मोक कर रहे हैं, वाह क्या आनंद है, मेरे को भी एंजॉय करना चाहिए, ले यार तू भी यार, क्या लाइफ इज टू एंजॉय यार, ओके तो उससे अच्छा ओके लेट मी एंजॉय दिस सिगरेट, तो फिर सिगरेट पीता है तो शुरू शुरू में वो सिगरेट को एंजॉय कर रहा होता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सिगरेट का वो दास बन जाता है, फिर उसकी लत पड़ जाती है, फिर उसको खांसी आती है, फिर धीरे धीरे लंग्स खराब होने लगती हैं, लेकिन सिगरेट आदेश देती है और एक, अरे भाई कैंसर हो गया, नहीं और एक, डॉक्टर ने मना किया है, नहीं और एक, तो कुछ नहीं सुनते फिर हमारी, हम सिगरेट के दास बन जाते हैं पूरी तरह, सिगरेट हमको आदेश करती है, हमारा शरीर खराब हो रहा है, घर बर्बाद हो रहा है, लोग शराब के दास बन जाते हैं, घर बर्बाद होता है, सब पैसा उड़ जाता है, समाज के अंदर रेपुटेशन सब खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम अभी इंद्रियों के दास बन चुके हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, अब ऐसे ही दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये इंद्रिय इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा जब करते हैं तो बड़ी बुरी हालत होती है कि हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं, ये माया के दास बन जाते हैं, भगवान की माया शक्ति की, जो हमें बड़ा बुरा हाल करती है, हमारा हंटर से मारती है। जैसे जो आदमी कैद में होता है तो उसको पनिशमेंट के अंदर में गवर्नमेंट की सेवा करनी पड़ती है, तोड़ो पत्थर, पत्थर तोड़ो, कड़क मेहनत करो, तो ये हमारी स्थिति है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, वी आर स्ट्रगलिंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड ऑन द नेम ऑफ बिकमिंग फ्री फ्रॉम गॉड, वी आर स्ट्रगलिंग। इसे क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन के अनुसार स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वी आर स्ट्रगलिंग, लेकिन वी आर नॉट मीन्ड फॉर दिस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हमारा काम नहीं है ये स्ट्रगल में रहना। हमारा काम क्या है, अगर हम समझ जाएं कि हम भगवान के दास हैं तो चलो भगवान की सेवा करें, क्योंकि वही हमारी स्वाभाविक स्थिति है, उसी में हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो जब हम ये समझते हैं, जब अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करके ये जो मन इंद्रिय और जो ये सब बुद्धि है, जो थोड़ी शक्ति हमको दी है, थोड़ी स्वतंत्रता दी है, उसका उपयोग करके हम अपने मन को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो जब भगवान देखते हैं कि अभी ये वापस आना चाहता है तो फिर भगवान धीरे धीरे हमें इन इंद्रिय और मन के वश से धीरे धीरे मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। तो हमारी जो स्वतंत्रता जो हमसे छीन ली गई थी वो और अधिक वापस आती है, और फिर हम उसका और अधिक उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं तो और अधिक स्वतंत्रता आती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी पूरी तरह से ये जो जाल था मन इंद्रिय और बुद्धि का भौतिक जो हम पकड़े हुए था हम उससे मुक्त होते हैं। ये जो भौतिक मन बुद्धि इंद्रिय थी जब भगवान की सेवा में लगती है तो फिर ये शुद्ध हो जाती है, इसका नेचर बदल जाता है, अब ये मटेरियल की जगह स्पिरिचुअल हो जाती है। जैसे लोहा, आप लोहे को अग्नि में रखेंगे और उसको बहुत देर तक अग्नि में रखे रखेंगे तो लोहे का क्या हो जाएगा, इट विल बिकम रेड हॉट फर्स्ट, रेड हॉट, तो आग की तरह से काम करेगा, जहां लगाओगे जलाएगा। उसी प्रकार से ये इंद्रियां और मन जब भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो फिर ये भौतिक नहीं रहती हैं, फिर ये आध्यात्मिक हो जाती हैं, और इसलिए फिर ये हमारे बंधन का कारण नहीं बनती हैं, मोक्ष का कारण बनती हैं। यही मन यही इंद्रिय जो हमें घसीट रही थी इस भौतिक जगत में, घुमा रही थी एक के बाद एक अलग अलग जन्मों में जीवनों में, अभी यही मन और इंद्रियां जब नियंत्रित होकर के जब हम उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो पूरी तरह से ये हमें भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार करती हैं। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधम मोक्षयः, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषय जो मन भोग करने में लगा है वो बंधन का कारण है, और जो मन भगवान की सेवा में लगा है वो भगवत धाम जाने का कारण है। तो निर्णय आपके हाथ में है, माइंड कंट्रोल, सामान्य रूप से लोग माइंड कंट्रोल क्या मानते हैं, आप किसी और सेमिनार में जाएंगे माइंड कंट्रोल तो वो क्या बताएंगे आपको, माइंड कंट्रोल में इंक्रीज योर पावर ऑफ माइंड, जिससे कि आप इस भौतिक जगत में और अच्छे से एंजॉय कर सको, करेक्ट, यही बताएंगे इंक्रीज योर पावर ऑफ माइंड। तो एक्चुअली वो क्या बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन थोड़ी स्वतंत्रता हमको है, इस स्वतंत्रता के द्वारा हम चूज कर सकते हैं कि हम किस लेवल पर काम करें। तो तीन लेवल हैं, सत्वगुण, नेक्स्ट रजोगुण, तमोगुण, ये तीन क्वालिटीज हैं। ये पूरा भौतिक जगत इन तीन गुणों से बना है, हर चीज तीन गुणों से बनी है। तो हम जो बाहर के लोग जो सिखाते हैं माइंड कंट्रोल या जो भी, उस पर क्या सिखाते हैं कि कैसे आप अगर तमोगुण रजोगुण में हैं तो उससे उठ करके आप सत्वगुण में जाएं, मोड ऑफ गुडनेस, जिसमें आपको ये भौतिक जगत के ऊपर ये इंद्रियों को एंजॉय करने के लिए ज्यादा शक्ति मिलती है, ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है। यानी कि क्या होता है, जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं तो हमें ऐसा जीवन मिलता है जिसमें आयु लंबी होती है, लंबी आयु होती है, अधिक बुद्धि होती है, देवताओं का जीवन, या इस भौतिक जीवन में देखें साइंटिस्ट्स, वेरी लर्नेड पीपल, फिलोसोफर्स, तो वो लोग उदाहरण हैं सत्वगुण के। तो वो लोग जानवर की तरह से केवल खाना, सेक्स करना, इसी में इंटरेस्ट नहीं होता, यही उनका जीवन नहीं होता है, लेकिन प्रकृति कैसे काम कर रही है इसको समझना, अपना आहार नियंत्रित करना, कैसे शरीर को हम अच्छा मेंटेन करेंगे, तो वो लोग सत्वगुण का उदाहरण है। और तमोगुण का उदाहरण क्या है, जो भी मन में आया खाओ, सड़ा हुआ मांस खाना, शराब पीना, ये सब किसका उदाहरण है, तमोगुण का उदाहरण है। और रजोगुण बहुत अधिक तीखा, इस तरह का खाना, ये रजोगुण का है। तो वो लोग जो आपको माइंड कंट्रोल बताते हैं, वो लोग क्या बताते हैं कि तमोगुण और रजोगुण से निकल करके आप अभी सत्वगुण में आओ, सात्विक बनो, माइंड को कंट्रोल करना सीखो, सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, लेकिन अल्टीमेटली हेतु क्या है, पर्पस क्या है उस सबका, पर्पस वही है जो बीमारी की जड़ है, पर्पस वही है क्या, आई एम इंडिपेंडेंट एंजॉयर, मैं स्वतंत्र भोगता हूं, लेट मी एंजॉय। तो उससे क्या होगा, आपको सत्वगुण का शरीर मिल जाएगा, लेकिन शरीर मिलने का मतलब क्या है, आप कंट्रोल में तो रहे अल्टीमेटली माया के ही। तो इसलिए आपको ये जो चक्कर है, आप मनुष्य जीवन आए पर इसमें से ऑप्ट किए कि मुझे क्या, कौन सा अभी कौन सा भोग करना है, ठीक है ऊपर जाना है, लेकिन जब आप ऊपर जाओगे तो थोड़े समय बाद अपने आप वापस नीचे आना पड़ेगा। जैसे आपने देखा है मेले में फेरीज व्हील मैरी गो राउंड, हाँ, तो उसमें आप कहीं एक जगह बैठते हो, लेकिन कहीं से ही बैठोगे अल्टीमेटली घूम के वहीं आ जाओगे वापस। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में आपको ये ऑप्शन दिया है, हाँ, अब आप जहां पर भी जाना चाहो वहां बैठ जाओ, फिर वापस वहीं आ जाओगे, नीचे जाओगे फिर वापस वहीं आ जाओगे, ऐसे करके घूमते रहोगे। तो इसीलिए वो माइंड कंट्रोल से क्या फायदा जब वो टिकने वाला नहीं है। आज आप सत्वगुण में आ गए, आज आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाए, कुछ ध्यान किया, कुछ योग किया, ठीक है, अभी थोड़ा बुरी आदतों को स्मोकिंग छोड़ दिया, थोड़ा मन शांत हो गया है, लेकिन क्योंकि आपकी भावना अभी भी वही है कि मैं स्वतंत्रता हूं, भगवान के आप दास नहीं होना चाहते हो, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हो, इसलिए समय आने पर जब ये शरीर खत्म होगा तो फिर दोबारा से एक और भौतिक शरीर मिलेगा, और ये जो तीनों गुण हैं ये आपस में कभी सत्वगुण ज्यादा होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भौतिक जगत में एक ही स्थिति पर रह सके। वो जो व्हील है उसमें एक ही स्थिति पे ऊपर, कोई बोले मैं हमेशा ऊपर रहूंगा, संभव है? नहीं संभव है। ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, चलता रहेगा। ऐसे ही ये जो आर्टिफिशियल माइंड कंट्रोल है, यानी कि माइंड कंट्रोल टू एंजॉय दिस वर्ल्ड मोर इन ए बेटर वे इज एक्चुअली नॉट माइंड कंट्रोल, इट इज अनदर इल्यूजन। ये एक और भ्रम है, ये माया की एक और चाल है हमको फंसाने के लिए, एक और चाल है। तो ऐसे माइंड कंट्रोल नहीं टिकता है, नहीं टिकता है कुछ समय है। इसलिए आप देखिए इंद्र जो है वो देवताओं का राजा, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल माइंड, लेकिन एक बार उसको भी सुअर की योनि मिल गई। तो देवता कभी देवता रहते हैं, कभी सुअर बनते हैं। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु, जानते हैं, सुना है नाम, रावण, दे आर हैविंग वेरी बिग माइंड कंट्रोल, वेरी स्ट्रांग माइंड कंट्रोल। आप सोचिए हिरण्यकशिपु या रावण कितने शक्तिशाली थे, तीनों भुवन को जीत लिए थे, उनसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं था। तो शक्तिशाली बनने के लिए माइंड भी शक्तिशाली चाहिए ना, अदरवाइज कैसे वो लोग शक्ति स्थापित करेंगे। सो दे वर वेरी पावरफुल, दे वर हैविंग वेरी पावरफुल माइंड, वेरी पावरफुल बॉडी, एवरीथिंग पावरफुल, लेकिन फिर भी क्या थे वो, असुर थे। इसलिए क्या हुआ, असुर होने की वजह से उनको भी मरना पड़ा, खत्म, मर गए। अभी कहां है फिर कीटा, अभी इस जन्म में रावण हिरण्यकशिपु, अगले जन्म में चीटी बन सकते। तो फिर ऐसे माइंड कंट्रोल का क्या फायदा जो टिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए व्हाट इज रियल माइंड कंट्रोल, रियल माइंड कंट्रोल है कि जब हम ये जो भौतिक मन इंद्रिय बुद्धि है इसके पूरे जकड़ से निकल जाए, जब ये आत्मा जो सो रहा है जब ये जगेगा और जग करके भगवान की सेवा करेगा, तब उसको भगवान मुक्ति देंगे इस आर्टिफिशियल माइंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंद्रिय से। और जो उसका अपना वास्तविक मन बुद्धि और इंद्रिय है, आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक इंद्रिय, वो प्रकट होगी, जिसके द्वारा वो भगवान की सेवा करके भगवत धाम जा सकेगा और नित्य रूप से शाश्वत सुखमय जीवन में वहां रह सकेगा। ऑटोमेटिक माइंड कंट्रोल, क्योंकि जब भौतिक मन ही नहीं रहा तो फिर मन का डिस्टर्बेंस तो अपने आप खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ये जो भगवत गीता का प्रोसेस है माइंड कंट्रोल का, ये बहुत ही अलग तरीका है, ये सामान्य माइंड कंट्रोल प्रोसेस की तरह नहीं है, क्योंकि ये बहुत डीप में हमारी रूट, समस्या के रूट को बताता है। केवल सुपरफिशियली बस कुछ 5 मिनट ध्यान करो, ये करो, वो सब नहीं है। भगवद गीता में बहुत गहरा विज्ञान है, समझना इस विषय को कि आखिर हम कौन हैं, क्या हैं, मन क्या है, कैसे काम कर रहा है, इस सब को समझ करके जड़ से इस समस्या को निपटाना, कंप्लीट फ्रीडम प्राप्त करना, पूरी तरह से फ्रीडम प्राप्त करना। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम हमको जो मिल सकती है, बता सकते हैं आप? फ्रीडम, मुक्ति का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है आत्मा के लिए? क्या मतलब मोक्ष का मतलब क्या? सभी क्या, सभी का, सभी से किससे? हैं जी, योनि होती है। तो जीव का हाईएस्ट लेवल जो उसका मुक्ति का है वो है कि ये जो माया के द्वारा वो जो बंधा हुआ है इससे वो मुक्त हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या वो भगवान से मुक्त हो सकता है, भगवान के कंट्रोल से मुक्त हो सकता है? क्योंकि भगवान से मुक्त होने के कारण ही तो माया के कंट्रोल में आया है। तो इसलिए वास्तव में माया से मुक्त होने का तरीका है अपने को भगवान के कंट्रोल में रखना। सो द रियल माइंड कंट्रोल मीन्स टू एक्सेप्ट टू बी कंट्रोल्ड बाई गॉड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर माइंड कंट्रोल, फॉर ऑल कंट्रोल। इफ यू वॉन्ट टू रियली हैव माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, देन यूज योर सेंसेज एंड माइंड फॉर द सर्विस ऑफ गॉड। तो फिर जो आपकी जो समस्याएं हैं कि मन उदास होता है, उदास का कोई प्रश्न नहीं है। जब जीव भगवान की सेवा में रहता है वो हमेशा से परम आनंद में रहता है। फिर डिप्रेशन और फिर क्या क्या समस्याएं बताए थे, सब समस्याएं जो मन से जनित हैं, एंगर, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये सब अपने आप गायब हो जाती हैं। इसके लिए आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान वो सूरज के समान है और ये माया अंधकार के समान है। अभी अंधकार है, जब सूरज निकलेगा तो क्या होगा, अपने आप सब अंधकार चला जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जो एनिमीज हैं जो हमारे हृदय में हैं, ये सब जो परेशानी गड़बड़ हैं, वो सब अंधकार हैं, माया के द्वारा प्रेरित। तो उसका निवारण करना है तो क्या करना पड़ेगा, सूरज के आगे अपने को लाना पड़ेगा, यानी भगवान, अपने को भगवान के आगे लाना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम भगवत गीता को समझ करके अपने को भगवान की शरण में रखते हैं तो फिर स्वतंत्र अपने आप रूप से ये सब गंदगी, ये सब काम क्रोध निकल जाते हैं और हम इस माया के चंगल से निकल के स्वतंत्र हो जाते हैं, इसी जीवन में सुख अनुभव करते हैं और फिर दोबारे जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के निकल करके भगवत धाम जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि दैवीयेषु गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्तिते, कि ये जो मेरी माया है इसको लांग पाना इम्पॉसिबल है। अपने आप से ट्राई करोगे कभी नहीं निकल सकते, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं मैं उनको इस माया से, चंगुल से निकालता हूं। तो इसीलिए ये विषय जो माइंड कंट्रोल का है उसका हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। ऐसा नहीं होगा कि आज आप ये क्लास अटेंड करेंगे और कल से एकदम से माइंड कंट्रोल हो जाएगा। No, don't do anything. They will, their attraction will immediately go. They will not stop hearing anything. अभी माइंड कंट्रोल नहीं है और टाइम लगेगा अभी। तो इसीलिए ये क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास के माध्यम से हम आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि कृपया करके आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ना है वो जीवन चलाने के लिए, शरीर यापन के लिए, दैट्स ओके। वो ही सब कुछ जीवन नहीं है, जीवन उसके अलावा ये सब गहरे तत्वों को जानना है, हमारे वास्तविक सुख को समझना है, ये कैसे इस मन और इंद्रियों से मुक्त होना है। ये इंद्रियां, ये जो आपको सब हैबिट्स, ये सब जो आपको गुलाम बनाए हुए हैं, आप सब, हम सब लोग जो गुलाम है अपने मन के, अपने इंद्रियों के, उस गुलामी से निकलना है। इसी जीवन में निकलना संभव है अगर आप चाहते हैं तो, और अगर गुलाम बने रहना चाहते हैं तो रहिए, पिटते रहिए, कभी अच्छा लगेगा लेकिन बार बार पिटेंगे बुरा भी लगेगा। डिसीजन आपके हाथ में है, क्या आप गोस्वामी बनना चाहते हैं या गोदास बनना चाहते हैं, इंद्रियों के दास बनना चाहते हैं, मन के दास बनना चाहते हैं या इनके स्वामी बनना चाहते हैं। इनके स्वामी, इंद्रियों के स्वामी बनने का मतलब भगवान के दास बनना। तो इस विषय को गहराई से समझाने के लिए हमने आपके लिए एक कोर्स आयोजित किया है। नाउ यू कैन शो द कोर्स। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स हैं उनके लाभ के लिए, क्योंकि अभी आपका सेमेस्टर शुरू हो रहा है, पढ़ाई का लोड थोड़ा कम है, तो 9th फरवरी से लेकर के 12th फरवरी तक यहीं पर इसी हॉल में ये एक भगवत गीता का कोर्स है। टॉपिक्स हैव नॉट बीन डिस्प्लेड, जिसमें चार दिन 9th, 10th, 11th, 12th हम लोग चार टॉपिक्स देखेंगे। पहले दिन देखेंगे What is the mystery of consciousness? Okay. No problem, leave it. Just show that. पहले दिन हम देखेंगे mystery of consciousness, जिसके ऊपर हमने आज थोड़ी चर्चा की कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, इस विषय को कैसे समझा जाए, ये चेतना कहां से उदित होती है, क्या रसायनों से होती है, क्या हम एक मशीन हैं? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने लोग स्टडी करते हैं? आपका विषय है किसी के यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एनी स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं, अच्छा मास्टर्स में, इंजीनियरिंग में, ओके। तो क्या आदमी केवल एक पावरफुल रोबोट है? क्या कभी ऐसा रोबोट बना सकते हैं हम जो आदमी को रिप्लेस कर सकता है? तो उस विषय के ऊपर हम पहले दिन चर्चा करेंगे, फिर दूसरे दिन हम चर्चा करेंगे गेटिंग द आईज टू सी गॉड, भगवान आत्मा, ये सब विषय को समझने का तरीका क्या है? या आप बोल रहे हैं भगवद्गीता शास्त्र है, कैसे ये ज्ञान सच्चा ज्ञान है, हम कैसे समझें, कैसे हम ज्ञान को लेते हैं, कैसे समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ज्ञान लेने का तरीका क्या है? हालांकि हम भगवान को देख नहीं सकते तो फिर कैसे परफेक्टली जान सकते हैं कि कौन है भगवान? तो ये सब विषय। फिर तीसरे हम दिन देखेंगे साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, ये सब जो भ्रमण हो रहा है जो मैंने दिखाया आपको 84 लाख योनियों में, इसका पूरा साइंस क्या है, हमको अगली योनि क्या मिलने वाली है, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा शरीर मिलने वाला है, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये सब। और आखिरी दिन हम देखेंगे मंत्र मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, मंत्र, मंत्र के द्वारा ध्यान। मंत्र का मतलब क्या है? दैट विच लिबरेट्स माइंड, जो मन जो हमको मुक्ति प्रदान करता है वो। तो प्रेजेंट जो एज है, वर्तमान समय, जिसमें आप सब लोग, आयु बहुत कम है हमारी, मेमोरी पावर बहुत कम है, शक्ति बहुत कम है इत्यादि, समय बहुत कम है, ये सब में शास्त्र में बताया हुआ तरीका क्या है माइंड और अपने को साक्षात्कार करने का? मंत्र मेडिटेशन, इसके ऊपर, योग के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से 4 दिन का कोर्स है जो शाम को इसी जगह पर 7:30 to 9:30 प्रोग्राम होगा। हर दिन प्रोग्राम के बाद में डिनर प्रसाद की व्यवस्था होगी, जिससे कि मैस आप लोग मिस कर रहे हैं तो यहां पर आकर के आप लोग रहें सुने, और केवल मैस ही मिस करने का प्रॉब्लम नहीं बल्कि आप प्रसाद ले सकें, भगवान को अर्पित भगवान का प्रसाद आप ले सकें। तो ये 4 दिन आपके लिए, जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, इसको कोर्स के अटेंड करेंगे, उनके लिए ये सब व्यवस्था है। और ये कोर्स बुक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये बुक जो स्टूडेंट्स रजिस्टर कराएंगे उनको फ्री दी जाएगी, जिससे कि वो कोर्स के बाद भी इस बुक को पढ़ करके अपने जीवन में उसको अपना सकें और गहराई समझ सकें। ये इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, तीनों लैंग्वेज में ये पुस्तक अवेलेबल होगी, जिसको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लोग ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपीज है, जिसके अंदर ये बुक का कॉस्ट इत्यादि सब इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर चांस आपको ये दिया जा रहा है कि ये 4 दिन के अंदर पूरी भगवद गीता का एसेंस, यदि आप लोग थोड़ा समय निकाल करके जानने को इच्छुक हैं कि क्या है भगवद गीता में, क्या क्या ज्ञान उसके अंदर दिया है, कितने कितने लोग इसको पढ़ करके देश विदेश में, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है ना भगवद गीता, अमेरिकन, जर्मन, सब लोग जानते हैं कि इट्स ग्रेट बुक ऑफ नॉलेज। सो अभी आपका जो एज है, यदि उसमें ये जानकारी होगी तो पूरी लाइफ को आप उसके अकॉर्डिंगली रेगुलेट करके अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। ये जो बिविल्डरमेंट है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हुआ है, इंद्रियों के दास बन गए, ये सब से आप छूट सकते हैं। ये बड़ा एडवांटेज आपके इस जीवन में है, क्योंकि योर ब्रेन इज स्टिल शार्प टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर, होपफुली। तो इसीलिए ये चांस आपके पास है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन टेबल बाहर लगाया हुआ है। आप जब यहां से जाएंगे तो जो लोग, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इस कोर्स में, हमारा निवेदन है सब लोग आइए। देखिए इस बुक की कॉस्ट, अकेली कॉस्ट इज 70 रुपीज। तो ये फीस हम लोग रख रहे हैं जस्ट टू एंश्योर दैट सिंसियर पीपल कम, दैट्स इट। वी हैव नो इंटेंशन टू अर्न मनी फ्रॉम यू, हमारा एक ही इंटेंशन है कि आप जो विद्यार्थी हैं, ये नॉलेज कोई दे नहीं रहा है, सब केवल पैसा कमाओ और एंजॉय करो, बस यही ज्ञान दे रहे हैं। और फिर इसकी वजह से लोग हमेशा हताश रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो इसलिए हमारी, हम चाहते हैं, हमारी संस्था का उद्देश्य यही है, क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान कि हम भगवान के जो अंश हैं वो सब इस ज्ञान को समझ करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसीलिए इसी इच्छा से हम लोग ये कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये 4 दिन का कोर्स। तो हमारे आप सबसे ये विनती है हाथ जोड़ के कि आप कृपया करके इस कोर्स में आइए, थोड़ा समय निकालिए, और हर प्रोग्राम में प्रसाद होगा, कीर्तन होगा, प्रश्न उत्तर होंगे, आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं आप उसको पूछ सकते हैं, और इस तरह से आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ पर रोकते हैं, अभी किसी का कोई प्रश्न है आज के विषय में तो आप पूछ सकते हैं, 1-2 प्रश्न हम लेंगे, फिर थोड़ा कीर्तन करेंगे और उसका प्रसाद। एनी क्वेश्चंस? यस प्लीज। अभी जेल है, जेल में सभी कैदी ही होते हैं जेल के अंदर, उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में सब लोग जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इन 4 चीजों से ग्रसित हैं, जो सबसे बड़े 4 दुख हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो इन 4 दुखों से पीड़ित नहीं है? तो ये मृत्यु दुख नहीं है? जन्म क्या दुख है वो आप भूल गए हैं, जब माँ के गर्भ के अंदर और जब जन्म हुआ था क्या दुख है वो आप अभी आपको स्मरण नहीं है। तो जन्म दुख नहीं है, वो बच्चा क्यों रोता हुआ पैदा होता है? अगर उसको बड़ा आनंद आता है जन्म लेने में तो फिर रोता क्यों है, हंसता क्यों नहीं निकलता है? हाँ नहीं, जब जन्म तो क्यों रोता है वो, अगर वो सुखी है तो जन्म के समय? फिर बुढ़ापा, अभी कौन है जिसको बुढ़ापा सुखी लगता है? सब लोग बेचारे बुढ़ापा कब मरूंगा, कब नहीं, इससे तो मर जाना अच्छा है, इतना दुखी होते हैं। बीमारी है, कोई है जिसको बीमारी सुखी लग सुख लगती है? तो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि 4 बड़े कष्ट हैं जिससे सबको गुजरना पड़ता है, इसलिए ये दुख का आगार है। लेकिन हम लोग इतने डल ब्रेन हैं कि इतने बड़े बड़े दुख होने पर भी हम सोचते हैं लाइफ इज क्वाइट नाइस। गटर में पड़े हुए हैं, शराब पी के गटर में पड़ गया कोई आदमी, चारों तरफ मल इकट्ठा है, फिर भी ऐश है। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग इतने कष्ट में है लेकिन फिर भी इनसेंसिटिव हो गए हैं। हमको मरना, ये बुढ़ापा, ये सब दुख हमारे लिए नहीं है। हमारा जीवन नित्य भगवान के सानिध्य में रहने का है, जिसमें कोई बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं। वो आनंद की स्थिति को छोड़ करके हम ऐसी दुर्गति में हैं। आपको कभी हेडेक हुआ है? एक जिसको हेडेक माइग्रेन हो उससे आके पूछो लाइफ कितनी अच्छी है, जब माइग्रेन हो रहा होता है। सो लेकिन जब वो दुख कुछ समय के लिए नहीं होता है तो हम सोचते हैं लाइफ बहुत अच्छी है। जैसे आदमी को, किसी को पानी में डुबोया जाए तो उसको बड़ा तकलीफ होती है ना, पानी में सांस नहीं आता है, तड़पता है सांस के लिए। फिर कुछ क्षण के लिए उसको पानी से बाहर निकाला जाता है तो एकदम से सांस आता है, उसको सांस लेने में लगता है कि पता नहीं क्या सबसे बड़ा आनंद है। तो सांस लेने में कोई आनंद नहीं है, लेकिन पहले उसको सांस नहीं आ रहा था, अभी सांस आ रहा है तो उसको लग रहा है सांस लेना बड़ा बड़ा आनंद है। तो ऐसे ही हम लोग एक्चुअली कोई सुख तो क्या हम जानते ही नहीं, केवल दुख जब कुछ समय के लिए नहीं होता है तो लगता है बड़े अच्छी, इट्स नाइस कंडीशन। किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर, कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं है जहाँ फ्रैक्चर नहीं हो, सब तरफ पट्टियां बंधी हुई हैं, 2 नली अंदर हैं, 2 नली बाहर हैं, फिर भी आप जाके पूछिए भाई कैसे हो भाई, अभी बेटर, अच्छा हूँ भाई। तो ऐसी हमारी स्थिति है, सो एक्चुअली वी आर वेरी इन अ हॉरिबल कंडीशन। यस आध्यात्मिक जगत का होता है, शास्त्र के आधार पर कहते हैं, भगवान बताते हैं भगवद गीता में, परस्तस्मात् तु भाव अन्यत् अव्यक्त व्यक्ता सनातनः न तद, एक और श्लोक में कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांक न पावकः। मेरा धाम जहां पर सूर्य प्रकाश और बिजली इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मेरा धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम ममा, जिस धाम में जाने के बाद इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता है। तो वो सब जानकारी शास्त्र में उपलब्ध है, भगवद्गीता में, सभी शास्त्रों में, भगवद्गीता में भी। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। यस, भगवान की सेवा कैसे की जाए? भगवान की सेवा करने की शुरुआत होती है भगवान के नामों के श्रवण और कीर्तन से। इसलिए हम पहले शुरू में क्या किए, सबसे पहले हरे कृष्ण कीर्तन किए, क्योंकि हरे कृष्ण कीर्तन जो भगवान के नाम हैं वो हमारे को पहले शुद्ध करते हैं। तो भगवान की सेवा करने के लिए पहले हमें शुद्ध होना होगा। प्राइम मिनिस्टर का नौकर बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है ना, तो ऐसे ही भगवान की सेवा करने के लिए हमें पहले शुद्ध होना होगा। तो वो भगवान का नाम लेने से हम शुद्धिकरण का क्रिया प्रारंभ करते हैं। इसलिए भगवान की सेवा का प्रारंभ होता है भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन, ये भगवद्गीता के को सुनने से, समझने से, यहां से शुरू होती है। फिर आगे चल के आप धीरे धीरे समझेंगे, वो चार दिन का कोर्स है, उसमें हम लोग इसके विषय में और आपको डिटेल में बताएंगे कि किस अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा होती है, कैसे अपने जीवन को, स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, फिर भी केंद्र कैसे भगवान को रखना चाहिए। इस जीवन में रहना है, शरीर यापन का दैट्स ओके, लेकिन केंद्र कैसे भगवान की सेवा होनी चाहिए। ओके ओके, वन और टू मोर क्वेश्चंस। हाँ जी। यस, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, अज आत्मा अज है, उसको कोई जन्म नहीं होता है, नित्य, वो शाश्वत नित्य है, शाश्वत है, पुराणो अत्यंत प्राचीन है, न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर भी उसका मरण नहीं होता। तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ता जाता है, तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन जो आप देख रहे हैं, पहली बात तो वर्ल्ड के पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका आपको पूरा आंकड़ा है? है। तो कौन कौन से मच्छरों की पॉपुलेशन का स्टेटिस्टिक्स किया आप? नहीं, तो फिर आपको वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे पता? वर्ल्ड पॉपुलेशन है जी, लेकिन केवल ह्यूमन बींग्स ही आत्मा है, ठीक है ना? इसलिए यस प्लीज। हाँ जी। सब कुछ ओके, यस, वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, हम सबके विषय का, इंटरेस्ट का विषय। तो हमारे जीवन में जो भी होता है वो किसकी वजह से होता है? तो हमने देखा कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ, आत्मा के साथ रहते हैं। हम मनुष्य जीवन में एक छोटी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमारी मिलती है वापस, जिसके द्वारा हम एक प्रकार की इच्छाएं करते हैं। भगवान साक्षी के रूप में रहते हैं, इन इच्छाओं को देखते हैं और उस इच्छा के अनुसार हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको पूरा करने की। इस प्रकार से हम एक प्रकार का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हमारी इच्छा और कार्य के अनुसार उसके परिणाम बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं उसका एक परिणाम बनता है, फिर आपको, आप उस परिणाम को भुगतने के लिए आपको भुगतना पड़ता है फिर वो परिणाम। तो भगवान जो है इस प्रकार से परमात्मा के रूप में साक्षी रहते हैं और सैंक्शन देते हैं हमारी इच्छाओं के। तो कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, अपने सुख दुख के अल्टीमेट जिम्मेदार हम हैं, लेकिन उसके माध्यम हैं भगवान, इस प्रकृति के माध्यम से कराते हैं। जैसे किसी कैदी को अभी जेल में कोड़े पड़ रहे हैं, तो उसके कोड़े पड़ने का अंतिम जिम्मेदार कौन है? वो कैदी जो जल्लाद उसको मार रहे हैं वो, या सरकार जिसके अंडर में वो जल्लाद, जिसके ऑर्डर से वो जल्लाद उसको मार रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उसका, उसकी सजा का? वो खुद, करेक्ट। अगर वो जल्लाद नहीं होते तो उसको सजा नहीं होती, अगर वो जेल नहीं होता, गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं होता तो भी उसको सजा नहीं मिलती। इसलिए सरकार के माध्यम से ही सजा मिल रही है, जल्लाद के माध्यम से सजा मिल रही है, लेकिन ना तो जल्लाद रेस्पॉन्सिबल है, ना तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल वो आदमी खुद है, क्योंकि खुद उसने गुनाह किया है तभी तो जाकर के उसको सजा मिल रही है। उसी प्रकार से हम इच्छा करते हैं इस जगत का भोग करने की, और फिर मनुष्य रूप में एक प्रकार की इच्छाएं करते हैं, उसके प्रकार से भगवान हमें एक प्रकार की स्थिति प्रदान करते हैं और फिर उस स्थिति का परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जिम्मेदार हम हैं, लेकिन उसके माध्यम है भगवान और ये प्रकृति। यस, यस, यस। अगर हम उसको सही प्रकार से समझें तो अच्छे के लिए हुआ, नहीं तो अगर नहीं समझें तो फिर सब बुरे के लिए हुआ। जैसे अगर कैदी को हंटर पढ़ रहे हैं, अगर वो समझ ले कि ये मेरी गलती का परिणाम है, आगे से गलती नहीं करूंगा, तो ये हंटर पढ़ना उसके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि उसकी समझ में आ गया कि अभी गलत काम है ये, और नहीं समझे तो फिर ये कोई इसका फायदा नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत में जो हमें दुख मिल रहा है, हमें समझना चाहिए कि ये देखो मेरे भगवान से अलग होने का परिणाम है, भगवान को भूलने का परिणाम है, इससे अगर हम सीख लें तो ये हमारे अच्छे के लिए है। तो इस प्रकार से सबको अच्छे के लिए हो रहा है यदि हम उसको भगवद गीता के अनुसार समझेंगे तो। ओके, यस।
जैसे आपने बताया कि मनुष्य जो है कि 84 लाख महीने के बाद मतलब मनुष्य जन्म होता है, उससे पहले वो लोग और ऐसे सेल ये सब बन के ऐसे रेप्टाइल्स मच्छर वगैरह सब बन के आता है।
हाँ जी,
और आपने भी बताया था जो हमने पहले की बात की थी कि जैसे जो हम जैसे उन्होंने बताया कि सुख दुख मिल रहा है, उन्होंने बताया था कि ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कारण होता है।
तो वो जो हमने बताया जो पशु योनि है वो कैसे उसमें जा रहे हैं, उसमें तो इंडिपेंडेंस है ही नहीं, इसलिए उसमें कोई उसलिए तो जैसा प्रकृति का नियम वैसे ही करेंगे। तो इसलिए वहां पर तो ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है अपने आप धीरे 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 धीरे, जब तक कि मनुष्य नहीं मिल रही तब तक, ठीक है। फिर मनुष्य नहीं आने पर फिर वहां से कर्म का सब बंधन स्टार्ट होता है। नहीं देखो, एक प्रकार के इवोल्यूशन से एक प्रकार का मनुष्य जीवन मिला, तो मनुष्य जीवन मिलने पर एक प्रकार का आपका कार्य है, जहां से भी आप मनुष्य योनि में ऐसे जहां से भी नीचे गए फिर वापस आपको वहीं पर आप आएंगे, उसी प्रकार की स्थिति में आएंगे।
हाँ
नहीं है, यस यस। तो इसलिए जहां से हम इसलिए जहां से हम छोड़े थे मनुष्य जीवन में, जहां से फिर वापस उसी उसी प्रकार की योनि में आके वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़े थे। यस नहीं, यस यस। ओके, अभी हम समाप्त करते हैं इस क्लास को, अभी कीर्तन करेंगे थोड़ी देर, 5 मिनट हम लोग खड़े होकर के कीर्तन करेंगे भगवान के आनंद के लिए। यह हरे कृष्ण मंत्र